वुमेन हमारी कंट्री में सेफ है आज?
बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं, जयपुर में एक बच्ची क्रिटिकल है, शी वाज रेप्ड एंड स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स, शी इज ऑन वेंटिलेटर, उसका पूरा सिर फाड़ दिया उन्होंने, गोली मार दी उसको, और ऐसे केसेस मेरे पास रोज आते हैं।
व्हाट डू यू थिंक, कैसे रुकेगा ये?
सोच की बात है कि एक वुमेन को हम क्या समझते हैं, क्या उसको एक ऐसा समझ लिया कि उसको बलात्कार किया और उसको मार दिया? हम सीखते कहाँ से हैं? अपने बॉलीवुड के हीरो से, और फिल्में आती हैं एनिमल जैसी, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बड़े हैं। आप सोचिए, नेता बयान दे देते हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। राजस्थान के एक मिनिस्टर ने तो बोल दिया था, रेप हो रहा तो एंजॉय करो।
रियली?
हाँ,
यू नो जैसे स्कूल में जो स्कूल जाते हैं उन लोगों को सिखाते हैं, आई थिंक अब क्लासेस होती है गुड टच बैड टच की, वैसे आई थिंक बॉयज के लिए भी क्लास होनी चाहिए गुड सी बैड सी की।
आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। दो मेरा इतना बड़ा केस खराब हुआ, नेशनल इनजस्टिस है। वो उत्तराखंड की लड़की, हाँ नौकरी कर रही थी दिल्ली में, अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है। आप सोचिए, उसका इतना बुरा उन्होंने बलात्कार किया, ब्रोकन बॉटल्स उसके इंसर्ट की, क्या नहीं की। जो ये आरोपी थे उन्होंने बोला हाँ हमने बलात्कार किया, उसकी बॉडी यहाँ फेंकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करा है, बाइज्जत बरी किया अभी लास्ट ईयर।
क्यों? आज वुमेन्स डे स्पेशल एपिसोड है, एंड इस एपिसोड से हम जितने भी पैसे कमाएंगे ओवरऑल, ये इस एपिसोड की जो गेस्ट हैं उनके एनजीओ को जाने वाला है। आज का एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने ये बात करी कि इंडिया में वुमेन्स के राइट्स कौन कौन से हैं, वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, कौन से ऐसे हीडियस क्राइम्स हैं जिसको लोग करते हैं और अपने आप इन्फ्लुएंस की वजह से या हमारे जुडिशल सिस्टम की वजह से या पैसे की वजह से निकल जाते हैं। तो कल पे अगर हमारे आसपास कभी ऐसा कुछ हो तो हम कैसे खुद को बचा सकते हैं, कैसे खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और कैसे हम अपने आसपास के लोगों को एक बेटर तरीके से तैयार कर सकते हैं ताकि कभी भी ऐसे क्राइम्स ना हो, और अगर हो तो क्रिमिनल्स को प्रॉपरली सज़ा कैसे मिले। ये पूरा एपिसोड एक हार्श रियलिटी के बारे में है इंडिया की। मुझे ये एपिसोड प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा, बट मैं और मेरी टीम ने स्टिल कलेक्टिवली डिसीजन लिया कि ऐसा एपिसोड आप सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी ग्राउंड रियलिटी कि हमारे आसपास हमारी विमेन के साथ हो क्या रहा है उसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। इस एपिसोड का इंटेंशन और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है, आप लोगों के सामने ग्राउंड रियलिटी और इन्फॉर्मेशन लाना है। इस एपिसोड के द्वारा हम किसी को डराना नहीं चाहते, ना ही किसी की फीलिंग्स हर्ट करना चाहते हैं, बट आप लोगों को बेहतर तरीके से एक रियलिटी के बारे में बताना चाहते हैं। प्लीज़ ये एपिसोड बहुत ध्यान से देखना। Do you feel the media doesn't have any power, Ra?
No, total. Zero.
Really?
Zero. Other than these YouTubers, the new these independent journalists, they are doing a good job.
But do you think कि किसी YouTuber में इतना power है कि वो move कर सकता है कोई चीज़ की? नहीं।
Try कर सकते हैं. There are few. They have millions and billions of viewers. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि government गलत है. मैं ये कह रही हूँ कि जो भी वो सवाल पूछना चाहिए government को. If they need to raise questions, media का यही काम है और हम लोग का भी यही काम है. एक्टिविस्ट्स का भी यही काम है। मैंने कांग्रेस से भी सवाल पूछे तो निर्भया के समय कांग्रेस थी तो वी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कांग्रेस, बट अब मैं सवाल किससे पूछूंगी? जो सरकार में उसी तो पूछेंगे ना, हम किससे पूछें? इफ समथिंग इज नॉट गोइंग राइट वी हैव टू आस्क द करंट गवर्नमेंट।
या या, बट माय क्वेश्चन वाज मोर फॉर कि जैसे लोग बोलते हैं ना मीडिया में बहुत पावर है, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास बहुत पावर है, डू यू थिंक दैट कि आज एंड स्पेसिफिकली जब हर चीज़ एक छोटी सी चीज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, मीम पेजेस पे आ जाती है, न्यूज़ पेजेस में आ जाती है, बहुत सारा हो जाता है, राइट? डू यू थिंक किसी मीडिया हाउस या किसी इंडिपेंडेंट यूट्यूबर के इतना पावर है कि वो किसी गलत चीज़ के सामने खड़े हो जाए एंड कैन एक्चुअली मूव?
है थैंक्स टू सोशल मीडिया कि वी आर लाइक सिटिंग टुगेदर एंड आप भी बात कर पा रहे हो। पहले बहुत उसको एक हाउ डू आई से कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थी वो पावर टूल। अभी किसी को भी बात रखनी, मेरे खुद के काफ़ी आप मानेंगे कितनी पावर है सोशल मीडिया में। तो अभी हमने एक ट्रैफिकिंग का केस उठाया फ्यू डेज अगो ओनली, आई रेज आज टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, वो रैकेट बहुत सबसे बड़ा निकला नॉर्थ इंडिया का। वी हेल्प देम, वी रेस्क्यूड 4-5 किड्स। मुझे क्या मालूम था कि इट टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेक्सस। सो सोशल मीडिया से उठा हमको आया उसका। They reached out to my helpline number. We helped them. It turned out to be the biggest success story for us so far. Aaj hi, I was loaded with calls सुबह से, so I was on flight and this and that. But आप देखिए कितना अच्छा
response. क्या था case पूरा बताओगे, क्या था trafficking का, कहाँ से start हुआ, कैसे आपको social media पे आया, पूरा case क्या था, tell us.
So basically क्या, एक छोटा सा बच्चा 2 या 4 दिन का होगा, उसको एक नेबर्स ने, देखो नेबर्स का भी बहुत रोल है इन द सेंस, नेबरहुड विजिलेंस इज इम्पॉर्टेंट. आप गली में क्या हो रहा है, आपके नेबरहुड में क्या हो रहा है, यहाँ कुछ विजिलेंट सिटीजन्स ने हमें बताया कि एक लेडी है, वो एक छोटा सा बच्चा अचानक से आ गया उनके घर में, कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, कोई वहाँ पर एलिजिबल प्रेगनेंसी वाली कोई वुमेन भी नहीं है, ऑल आर मच ओल्डर, 55 ईयर, सडनली दो दिन का बच्चा ले आए हैं ये उठा के. सो दे मेड अ वीडियो, बट वो कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो टेनेंट थे एक पुलिस वाले की बिल्डिंग में, तो नोबडी हैड गट्स टू गो देयर. वो पहले भी पकड़े गए थे 6 महीना पहले, बट पुलिस वालों की प्रोटेक्शन की वजह से दे
उनको किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा,
किसी ने कुछ पूछने का गट्स नहीं दिखाया. इस बार उन्होंने उनका गेट क्रैश किया और वीडियो बनाया, वो वीडियो उन्होंने मुझे भेजा.
वीडियो क्या बनाया कि अपने बच्चा
हाँ कहाँ का है, वो आई शेयर दैट आल्सो विद यू. तो वो उन्होंने बच्चा कहाँ से आया, वो लेडी जवाब नहीं दे पा रही है, वो वीडियो उन्होंने मुझे, मेरा बिकॉज माय हेल्पलाइन नंबर इज प्रोमिनेंट, पीपल फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, उन्होंने मुझे भेजा. मैं कैलकटा में थी, संदेश खली का जो चल रहा था, आई वॉज इन संदेश खली, वो जो अभी वहाँ पर बहुत हाइप्ड है, वो विमेन इशूज बहुत सारा एट्रोसिटीज हो रहा है, तो मैं वहाँ एयरपोर्ट पर थी, मैं दिल्ली आ रही थी, तो मुझे आया तो इमीडिएटली मेरे साथ कुछ अथॉरिटीज के थे, एंड इमीडिएटली हमने चीफ ये कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को इन्वॉल्व किया, और बिफोर आई लैंडेड दे वर रेस्क्यूड. जब उन्होंने बच्चों को रेस्क्यू किया वहाँ से,
रेस्क्यू में 2-4 साल
निकले वहाँ बच्चे,
2-4 दिन के बच्चे,
एक तो 2-4 दिन का था, एक 4 साल का था, एक 6 साल का था, ऐसे निकले
उस बिल्डिंग में, उस घर में,
उस घर में. तो मैं जब लैंड की, तो फिर मैंने, हमें पता चला आपने आपने जो कॉल की उसकी वजह से रेस्क्यू भी हो गया. मुझे वहाँ के लोकल स्टिंगर का फ़ोन आया और नेबर से फ़ोन आया, मैम प्लीज़ ज़रूर आइए, आपकी वजह से ये हुआ है. फिर 2 दिन बाद फिर फ़ोन आता है कि वो तो अरेस्ट तो हो गए थे, फिर मुझे 2 दिन बाद फ़ोन आता है कि मैम ये नेक्सस बड़ा है, ये उतना छोटा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, इसमें और तार जुड़े हुए हैं और बच्चे रिकवर हो रहे हैं इनके थ्रू, जो हॉस्पिटल से चुराते थे फिर ये बेचते थे पुलिस के सांठगांठ में. हमने तो टॉप लेवल पे हमने फोन घुमाया तो इसलिए ये हुआ, नहीं तो ये चलते रहता. आज जब मैं आ रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी दैट इट इज़ द बिगेस्ट नेक्सस, पंजाब हरियाणा दिल्ली से लिंक्ड बच्चे उठा के पेचा करते थे. सो छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल से ला के फिर 10 लाख 15 लाख में बेच देते थे टू चाइल्डलेस कपल और फिर तो
एक चाइल्डलेस किसको बेचते थे,
चाइल्डलेस कपल को, और
okay.
अगर थोड़े और बड़े बच्चे होते हैं तो फिर वो सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, बट ये छोटे थे तो ये मे बी फॉर अडॉप्शन पर्पसेस. बट
और ये चुराते थे हॉस्पिटल से बच्चे,
सोचिए मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये बिगेस्ट नेक्सस निकला नॉर्थ इंडिया का. तो वही बात है कि देखिए छोटी सी इंटरवेंशन से इतना बड़ा रैकेट बस्ट हुआ.
क्विक क्वेश्चन, आप वुमेन एक्टिविस्ट हो राइट, डू यू थिंक अब इतने सारे चेंजेस आए, लॉज आए, इतनी अवेयरनेस आ गई, सोशल मीडिया आ गया है, डू यू थिंक वुमेन हमारी कंट्री में सेफ है आज?
बिल्कुल भी नहीं,
अभी भी नहीं,
बिल्कुल
बेटर हुआ है पहले से कुछ?
बेटर ये हुआ है कि रिपोर्टिंग बेटर हुई है, वुमेन हैव स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड, उन्होंने बातचीत शुरू करी है और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ वो बात कर सकती हैं,
बट ग्राउंड लेवल पे स्टेट अभी बेटर नहीं हुई.
बिल्कुल भी नहीं,
बिल्कुल भी नहीं. आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि सेफ नहीं?
आप मेरी हेल्पलाइन है, आप देखिए मुझे ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं. अभी मैं यहाँ से जयपुर जाऊँगी, जयपुर में एक बच्ची क्रिटिकल है, शी वॉज रेप्ड एंड स्टैब्ड मल्टीपल टाइम्स, शी इज़ ऑन वेंटिलेटर, उसका पूरा सिर फाड़ दिया उन्होंने, गोली मार दी उसको, उसका कान काट दिया और उसको अब वो स्ट्रगल कर रही है. और ऐसे केसेस मेरे पास रोज़ आते हैं, एवरी डे. आप सोचो मैं कैसे बोल दूँ सेफ़ है, पेरिफेरलिया पे सेफ़ है, ऊपर ऊपर पेरिफेरी पे सेफ़ है, लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर अंडर वैली ठीक नहीं है. हम लोग शहरों में बैठे हैं, हम थोड़ा सेफ है, थोड़ा सेफ है, बट अगर आप गांव दराज में जाएं, वहाँ पर एक लड़की को मतलब थोड़ा सा चलना भी पड़ता है ना, तो दैट इज़ वेरी अनसेफ पैच, तो वेरी वनरेबल टू ये सब चीज़ों के लिए. और आप छोड़ दीजिए दूर गांव दराज की चीज़ें, दिल्ली के आउटस्कर्ट से मुझे इतने केसेस आते हैं, रेप एंड मर्डर, सिंपल, इससे वो नीचे कुछ नहीं, रेप एंड ब्रूटल मर्डर्स, ऐसी हमारे पास कॉल्स आती हैं.
तो ये अरेस्ट नहीं होते लोग?
होते हैं अरेस्ट, तो दिस इज़ वेयर माय रोल कम्स, हम तो इस हम मेक श्योर करते हैं वो अरेस्ट हो, बट अरेस्टिंग से होगा क्या, मतलब ठीक है अरेस्टिंग हुआ, सजा भी हुई, पर रोकथाम कहाँ है, वेयर इज द सोल्यूशन, ये रुकेगा कब? तो मेन तो वो बात है ना,
व्हाट डू यू थिंक, कैसे रुकेगा ये, क्या
ये बड़ा सवाल है, इसी का सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं कि कैसे रुकेगा। हम लोग इसी पे लगातार 10 साल से, जब से निर्भया हुआ उससे पहले से ही चल रहा है ये, तो निर्भया से तो हाईलाइट हुआ, यहाँ तो रोज निर्भया है एवरी डे, तो उसका सवाल का जवाब तो हम खुद ढूंढ रहे हैं। पर सवाल का जवाब एक नहीं है कि मैं आपको एक स्टेटमेंट में बोल दूं कि ये रुक जाएगा ये करने से, नहीं, इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें होनी पड़ेंगी ना। सबसे पहले आप बताइए कि जो हम लोग सोचते हैं एक वुमेन क्या है, हाउ डू वी परसीव कि वुमेन को हम क्या समझते हैं, क्या उसको एक ऐसा समझ लिया कि उसको बलात्कार किया और उसको मार दिया, अभी दबी कुचली बैकग्राउंड से, इन द सेंस गाँव देहात से हैं, दलित हैं, कोई मुँह नहीं खुलेगा, एक तो ये है, वनरेबिलिटी फैक्टर तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही। दूसरा सोच की बात है, सोच कैसी है आपकी, ये सोच है कि महिलाओं को हम बलात्कार करें ये उसी के लिए बनी है या उसके साथ कुछ भी कर दें, ये उसके, ये सोच है जो, ये पैट्रियार्कल माइंडसेट है या ये सोच की बात है, सबसे पहले तो वो बदलनी पड़ेगी, तो वो रुकेगा। अब उसमें लगेंगे सालों, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है ना इतना ख़राब है ना, हम कितनी भी हिपोक्रेटिक बातें कर लें कि संस्कृति है, संस्कार है, कन्या पूजन है, देवियों की पूजा है, वो ऊपर है, नीचे की सच्चाई ये है। हमारे देश में क्या मानते हैं, या तो हम रिलीजन को मानते हैं या फिर हम बॉलीवुड को मानते हैं। रिलीजन में हमें क्या, देवी पूजा ठीक है, कन्या पूजा ठीक है, बट फिर अल्टीमेटली देवी के साथ आप करते क्या हैं, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, वो तो छोड़ दीजिए, ब्रूटैलिटी है। हम सीखते कहाँ से हैं, अपने बॉलीवुड के हीरो से, और फिल्में आती हैं एनिमल जैसी, आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस फिल्म में, उस फिल्म में क्या, मैं तो हर फिल्म की बात करूंगी, बट इस फिल्म से मैं पूरा हिल गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन दे हैव मेड फॉर वुमेन, वो बहुत असर करती है। और मुझे सबसे
क्या बड़ा, अगर हाईलाइट करनी है तीन चीज़ें जो आपको बहुत खराब लगी हो, क्या हाईलाइट
कि एक हीरो कर रहा है, प्रेम चोपड़ा ने आके किया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो विलेन था, दिक्कत तो तब भी थी क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं, बट वो विलेन के रूप में ही आते हैं। रणबीर कपूर, मतलब एक वो वाला तो एंगल छोड़ दीजिए, वुमेन वाला, वहाँ पुलिस नहीं है, मर्डर्स हो रहे हैं, धड़ाधड़ गन से चलाई जा रही हैं, बट आप महिलाओं को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहे हैं, वो अपनी जो गर्लफ्रेंड उनकी होती है मूवी में, मुझे देखनी पड़ी क्योंकि वी हैड टू रेज दिस इशू, वो किस तरह से उनको मतलब बूट लिकिंग के लिए या ये सब, यू नो ऑल दीज थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो मिसोजिनिस्टिक थी उस फिल्म में, जो डायरेक्ट इम्प्रेशन देती हैं। और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हैं और हम पे हेल्पलाइन पे कॉल्स आए हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, क्योंकि जब हीरो करता है, मैं और आप नहीं माने शायद इस बात को, बट एक जो एक जो नॉर्मल सिटीजन है इस कंट्री का, जिसके लिए रणवीर कपूर भगवान है, वो उसको देखेगा, वो उसको फॉलो करेगा, ये प्रॉब्लम है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आइटम गर्ल से, आइटम नंबर से। आई एम नॉट सेइंग, मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि वो कपड़े रिवील करते हैं, वुमेन कैन वेयर वट एवर दे वॉन्ट, उसकी बात नहीं है, जो प्रोजेक्शन है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है। आप लिरिक्स देख लीजिए, तंगड़ी कबाब है, मुझे खा जा, गटका ले, आई मीन आप क्या परोस रहे हैं, यू नो, सो आई हैव प्रॉब्लम्स विद दैट। वो नहीं कि मैं इसलिए मैं कोई नैरो माइंडेड वुमेन की मैं बोल रही हूँ कि वो सीन नहीं होना चाहिए, ये सीन नहीं होना चाहिए, रेलेवेंट टू द मूवी होना चाहिए। हमने राम तेरी गंगा मैली भी देखी, हमने किसी, मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऑब्जेक्शन, हमने सब देखा है, बट द वे यू प्रोजेक्ट अ वुमेन इन अ मूवी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी पे, वो है।
सो यू फील कि जो रेप केसेस हैं या सेक्सुअल ब्रूटैलिटी है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, वो सब ग्राउंड लेवल पे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं?
एब्सोल्युटली। आप बताओ किस से इन्फ्लुएंस होंगे, मैंने बताया रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है, रिलीजन तो हमारा खैर वुमेन को पेडेस्टल पे रखता है, वो तो बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक संस्कृत का वो मैन्युस्क्रिप्ट में है, शूद्र नारी है ताड़न की अधिकारी, मतलब उनको मानना है, मार के रखना चाहिए, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली लोग फॉलो करते हैं। आप हमारी आरती देख लीजिए, मैं भी करती आई हूँ बचपन से, अंधन को आग देत, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत, और बांझन मतलब सो समटाइम वी रिसाइट दोज थिंग्स, हमें नहीं मालूम है उनका अस्तित्व क्या है और उनकी मतलब वो हम सबकॉन्शियसली कर रहे हैं.
क्या होता है इसका मीनिंग?
कि आप देखिए पुत्र देत मतलब वहाँ पे आप कह रहे हो गेटिंग अ बॉय चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग, तो फिर वहाँ से शुरुआत है ना, सारी सारी शुरुआत वहीं से है. बट हम लोग इतना नॉर्मल रहने लगते हैं कि मुझे खुद रियलाइज हुआ व्हेन आई वाज रिसाइटिंग रिसेंटली कि ये तो गलत है यार. तो अब वही है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेता बयान दे देते हैं यार. आप सोचिए नेता बयान दे देते हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं. राजस्थान के एक मिनिस्टर ने तो बोल दिया था रेप हो रहा तो इन्जॉय करो.
रियली?
हाँ. और एक तीसरे ने बोला था कि मर्द हैं क्या हो गया. सो ये सारे बयान नेताओं के हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. आप हर नेता का बयान निकाल के देख लो. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर पूरे मैं इंडिया के लिए कोई वो नहीं है, हम सच्चाई को देखेंगे बिकॉज आई एम एन इंडियन एंड आई एम वेरी प्राउड इंडियन. तो मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है कि इसको उठाया जाए और इस पर वर्क किया जाए, तभी मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ. और मुझे लगता है कि चीज़ें बदलेंगी अगर हम सही दिशा में जाएँ. तो मेरा खाली बॉलीवुड से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नेताओं से भी इशू है कि वो लोग सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बयान दें.
आई अग्री विथ बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने बोले, बट मेरे को थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट लगता है
बॉलीवुड
एंड नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज आई फील कि आई थिंक हर कंट्री में अगर आप स्टैट्स देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर कंटेंट बनता है. एंड सिमिलर कंटेंट बनने के बाद कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा केसेस हाई है और कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा केसेस कम है.
हमारे से पागल फैन है जो कॉपी करने लगते हैं सलमान खान का ब्रेस्ट लिख के देख के.
बहुत सारे कंट्रीज में मतलब मैडनेस तो होती है.
इससे इतनी मैडनेस नहीं है.
आई थिंक एजुकेशन लेवल हैज मोर इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेइंग. सो ऑब्वियसली हमको वो कंसिडर करना चाहिए कि हम अगर कंटेंट बना रहे हैं तो किन लोगों के लिए बना रहे हैं और वो देखना चाहिए.
पर हम रेडी नहीं है ना.
हाँ, हम रेडी नहीं है बहुत सारी चीजों के लिए. दैट agreed completely, but I think the bigger thing is education and law than more
yeah,
than
yeah,
anything else.
Anything. वो तो मैं education पे भी आ रही थी. Education important है, पर किस तरह की education? आप कौन सी education की बात करेंगे? Education का content क्या है? आपकी education में आप क्या बता रहे हैं? That is important ना. अब education is not A to ABCD or 1 to 10. Education में how you perceive a woman again. आपके साथ हमारे schools को education नहीं है. Yeah. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. बट एक और चैलेंज है हमारी कंट्री में, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, राइट एजुकेशन एज वी डिस्कस्ड, बट काफ़ी लोग हैं जो अभी स्कूल ही नहीं जाते हैं. उसका क्या? जो स्कूल नहीं जाते हैं वो अनचैनलाइज बेरोजगार होते हैं और पुअर होते हैं, सेक्शुअली यू नो डिप्राइव्ड होते हैं. तो वो पता है किसको पकड़ते हैं? वो एक बच्ची को टारगेट बनाते हैं, छोटी बच्ची को. तो हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं छोटे बच्चों के, बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास.
यू नो जैसे स्कूल में जो स्कूल जाते हैं उन लोगों को सिखाते हैं, आई थिंक अब क्लासेस होती है गुड टच बैड टच की क्लास. वैसे आई थिंक बॉयज़ के लिए भी क्लास होनी चाहिए गुड सी बैड सी की.
आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया दो.
लाइक वी शुड बी टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट ओके व्हाट इज गुड सी बैड सी, व्हाट हाउ यू शुड लुक एट अदर पीपल, राइट? बट टेल मी कितने केसेस हैं इंडिया में जो रिपोर्ट होते हैं और कितने अनरिपोर्टेड होते हैं? डू यू हैव एनी डेटा अराउंड इट?
सो If you ask me the figure keeps changing. So I would just give you a percentage. 90% cases report नहीं होते हैं.
90% cases report ही नहीं होते हैं. और क्यों नहीं report होते हैं?
क्योंकि वो within the four walls of the house होते हैं और by uncles, by relatives, by fathers, stepfathers होते हैं और boys के साथ भी होते हैं. तो फिर वो बेचारे नहीं बोल पाते हैं और वो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ होते हैं. तो they don't have any platform. हम तैयारी नहीं है उनकी बात सुनने के लिए. तो बैड टच गुड टच सिखा के हम क्या ही कर लेंगे? मुझे लगता है वो ज़रूरी है, बट उनको बोलने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई गो टू स्कूल्स. मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों से बात करती हूँ, चाहे वो कोई भी क्लास एज ग्रुप हो. आप मानेंगे एंड ऑफ एवरी सेशन वी गेट केसेस. उनको प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने के लिए, तो रिपोर्टिंग तो कैसे होगी? आप में गट से नहीं, आप बेचारे वनरेबल से गलेबल से हो. फिर आप जाओ अपने एल्डर के पास, आपका एल्डर आपको स्ट्रेस करें, एंटरटेन नहीं करें, वो भी एक प्रॉब्लम है. उनको लगता है छोड़ो घर की बात है, घर में रहने दो. हमने कैसे केसेस हैंडल किए हैं कि हमने अरेस्ट करा दिया फादर को, स्टेप फादर को, उसके बाद माँ ने केस वापस लिया, उसने विटनेस नहीं दी, वो उल्टा हम पे काउंटर लगा देते हैं कि इन्होंने इंसिस्ट किया. क्योंकि वो बोलते हैं आप हमें खाना तो देने वाले नहीं हो, मेरा पति ही है या मेरे घर का मामला है, तो हम कर लेंगे सॉर्ट. तो इसीलिए 90% केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं. जो रिपोर्ट होते हैं वो ब्रूटल वाले होते हैं, जहाँ पर यू नो देर इज़ अ फिजिकल इंजरी टू दैट एक्सटेंट कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़े, वहाँ भी वो कवर अप करते हैं. मुझे तो हम लोग इतने बच्चों का एडमिशन कराते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ भी वो कवर अप करते हैं, ये चोट लग गई, गिर गए, बच्चा खेलते खेलते चोट लग गई. आई मीन प्राइवेट पार्ट में चोट इज नॉट एक नहीं होता,
इजीली ऐसे नहीं हो जाता कि चलते चलते गिर गए तो लग गए,
तो एक होता है दो होता है. बट हमने फिर काफी हमने इस पे रिसर्च किया, तो ये घर वाले ही सप्रेस करते हैं, बताना नहीं चाहते. और वो सही मतलब मैं उसको
क्या लगता है कि क्यों घर वाले ऐसे करते हैं, क्योंकि करते तो हैं घर वाले.
मैं बताती हूं
क्यों लगता है.
एक तो ये सोशल स्टिग्मा है, टैबू है, रेप हो गया, बलात्कार हो गया, इसमें लड़के की गलती नहीं देखते, लड़की की ही मानी जाती है. और हमेशा आप मानेंगे, एक छोटी बच्ची का केस आया, 6 साल की बच्ची है, उसको किसी नेबर ने उसको इनअप्रोप्रिएटली मोलेस्ट किया, टच किया, मोलेस्ट किया. जब उसने अपनी ग्रैंड मदर को ये बात बताई और हमें भी पता चला, तो हम पहुंचे तो ग्रैंड मदर बच्ची को डांट रही थी कि तुम्हारी गलती होगी, तुमने उनको हिंट दिया होगा. अब 6 साल की बच्ची ने क्या हिंट दिया होगा. तो हमारी सोच जो है ना बहुत ख़राब है इस सोसाइटी में. और एक तो विश्वास की बात है, सेकेंडली अगर वो अपना परिवार का सहयोग मिल भी जाए बच्चे को, या एडल्ट है अगर टीनेजर है, उसके बाद रिपोर्ट भी कर दिया. रिपोर्ट कराना अपने आप में एक पूरा एक इट्स अ वेरी बिग टास्क. आप पहुंच गए पुलिस स्टेशन, आपने करा ली, चलो हमारी संस्था, हम तो कुछ 1% लोगों तक भी नहीं पहुंच पाते बिकॉज हम लोग की भी लिमिटेशन है, हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, वी आर डूइंग आर बिट फ्रॉम आर साइड. तो एक आपने FIR भी करा ली, उसके बाद क्या होगा. ये जो लड़की का मैं केस बता रही हूँ जयपुर में, उन्होंने केस रजिस्टर करा लिया, उसको बेल दे दी इन्होंने 2 महीने बाद. वो 2 महीने बाद बेल पे बाहर आया और उसने उस लड़की का क्या किया, उसको गोली मार दी, स्मैश कर दिया, काट कूट के. अब वो वेंटिलेटर पर हैं, जिनका केस मैं बता रही हूँ, जिनको मैं मिलने जाऊँगी कल.
और फिर उसके साथ क्या हुआ, उस लड़के के
फिर से अरेस्ट. उसको क्या है, अभी उसको अरेस्ट किया, बट उसने बदला लेना था. तो ये बेल जो दे देते हैं, और रेप केसेस में बेल, पैरोल, आई मीन गुरु ये राम रहीम भी बाहर आ जाते हैं. ऐसे बहुत सारे रेपिस्ट हैं, ये तो चलो हाई प्रोफाइल है, बट नॉर्मल कोविड में हमारे कितने बलात्कारियों को बेल दे दी गई.
और क्यों दी जाती है बेल?
रूल है, बलात्कारियों को तो नहीं देना चाहिए कम से कम.
क्या रूल है, कैसा रूल है?
उनको लगता है जब तक केस चल रहा है, जब तक अनलेस प्रूवन गिल्टी.
तो इंडिया में रेप कन्विक्शन इतना कम क्यों है?
इसीलिए ना रिपोर्टिंग नहीं है, फिर सबूत
हो
नहीं
गया,
सबूत
अब रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट होने के बाद आदमी को अरेस्ट भी कर लिया, अरेस्ट होने के बाद
सबूत नहीं मिलते. एक ऐसा
तो सबूत कैसे मिलेगा रेप केसेस में? फॉर एग्जांपल किसी का रेप हुआ, वो एविडेंस कहाँ से लेके, वो उस टाइम पे कोई सोच तो रही नहीं है, सोच तो रहा नहीं है कि यार मैं एविडेंस कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे कल इसको फंसाना है. उस टाइम पे तो इंसान बस सेल्फ डिफेंस की सोच रहा है, भागने की सोच रहा है.
सो ये हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, इसलिए हमारी जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसमें लिखा है कि मतलब अगर पीड़िता है तो उसको मतलब क्या क्या, अगर गलती मतलब आपके साथ हो ना, बट अगर हो जाए तो आपको क्या करना है, और अगर आप असिस्ट करो किसी विक्टिम को तो ये क्या है. तो एविडेंस कलेक्शन तक हमने इसमें डाला है. हमारे यहाँ एविडेंस कलेक्शन का इतना पुअर सिस्टम है, ट्रेनिंग्स हैं, पुलिस जो एविडेंस कलेक्ट करती है, लिटरली मैं खुद पहुंची हूँ हॉस्पिटल पहले पुलिस से, और जब वो एविडेंस कलेक्शन करने आए 5 साल की बच्ची का, यू नो वो पॉलिथिन में कलेक्ट कर रहे थे, खाने की पॉलिथिन में. अब उसमें क्या ही DNA मिलेगा, और एक एक साल की वेटिंग है. पहले वो कलेक्शन करके अपने पुलिस थाने में रखेंगे. मेरा इतना बड़ा केस खराब हुआ, इतना बड़ा केस जो कि नेशनल इनजस्टिस है, ह्यूमन राइट वायलेशन टू अनदर लेवल है. उस बच्ची का ऐसा जघन्य बलात्कार हुआ, वो दिल्ली की द्वारका की बच्ची थी, निर्भया से पहले हुआ. वो उत्तराखंड की लड़की, हाँ नौकरी कर रही थी दिल्ली में, वो अपनी पहली सैलरी लेकर आ रही थी, 19 साल की लड़की. आप सोचिए कि जब वो घर से थोड़ा किलोमीटर उसको वॉक करना था, फील्ड थी, खेत थे, वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसकी 2 दोस्त साथ में होती हैं. वो लड़की अपनी नौकरी से आ रही है, उसको गाड़ी में ले लेते हैं, बाकी 2 दोस्त बच के भाग निकलती हैं. वो 2 दोस्त बताती हैं कि उसको लाल गाड़ी में अपहरण किया. वो पेरेंट्स को बताती हैं, पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं कि मिसिंग, हमारी बेटी का अपहरण हुआ है, ये नहीं मिसिंग है, लड़कियों ने देखा, गाड़ी में ट्रैक किया, तब भी नहीं ढूंढते. अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसको बलात्कार करके हरियाणा में ले गए. 4 लोगों ने जब उसके साथ बलात्कार किया, आप सोचिए उसका इतना बुरा उन्होंने बलात्कार किया कि वो तड़पती रही खेतों में ठंड के दिनों में. और उन्होंने क्या ब्रोकन बॉटल्स उसके इंसर्ट की, क्या नहीं की, उसकी बॉडी पार्ट्स कट कर दिए, उसको ब्रांड किया क्योंकि उसने रेजिस्ट किया तो उसको यहाँ भाना होता है जो गाड़ी का गर्म पाना वो उसकी चेस्ट पे लगाए और उसको ब्रांड किया कि यू आर अ स्लट, लिखा गर्म पाने से, तड़प तड़प की वो बच्ची मरी और किसी तरह से हमने फांसी तक उनको पहुँचाया। आप मानिए वो जो एविडेंस कलेक्शन कैसे हुई, जो ये आरोपी थे, ये आरोपी ने जब इनको उनकी गाड़ी के आधार पर पकड़ा गया, क्राइम पेट्रोल में भी ये कवर हुआ, जो उनको गाड़ी पे कवर पकड़ा गया उनकी गाड़ी के थ्रू नंबर के थ्रू लड़कियों ने जो देखा था उसके थ्रू वो पकड़े गए। उन्होंने बोला हाँ हमने बलात्कार किया, उसकी बॉडी यहाँ फेंकी है। वो खुद लेके गए 3 घंटे की ड्राइव दिल्ली से जहाँ पे उन्होंने उसकी बॉडी फेंकी, वो खुद दिखा रहे हैं इस खेत में हमने फेंकी, वहाँ से रिकवर हुई बॉडी। लोअर केस में, लोअर कोर्ट में उनको फांसी मिली, हाई कोर्ट में उनको फांसी मिली। मैं उनके साथ जुड़ी रही इतने साल, हमने बहुत मेहनत करके, मतलब वकील क्या, मतलब मेरा खुद पर सबसे बड़ा केस मेरी लाइफ का ये कि हमने मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए इसको, फांसी मिलती गई, अच्छा रहा सब कुछ की उनको सज़ा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कराया, बाइज्जत बरी किया अभी लास्ट ईयर।
क्यों?
क्योंकि उन्होंने बोला कि एक एविडेंस नहीं मिला, आपने गाड़ी खुली छोड़ दी, पुलिस वालों ने ब्लॉक नहीं करी, सील नहीं करी, तो और जो जो उन्होंने सैंपल कलेक्ट किए फील्ड से वो पुलिस थाने में पड़े रहे 24 घंटे। फिर जो रिपोर्ट आई वो एक साल बाद आई FSL की, तो उन्होंने अपने ही लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को रिजेक्ट करते हुए एक जो एविडेंस नहीं मिला, जो 8 एविडेंस मिले उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार
देती है। एविडेंस नहीं मिला,
जो जो चीज़ सरकमस्टेंशियल एविडेंस की, वो मतलब गाड़ी क्लोज नहीं की, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए पुलिस ने, गाड़ी को सील नहीं किया, पुलिस की गलती, और उसकी वजह से बाइज्जत बरी कर दिया उन्हें। वो रेपिस्ट अगले दिन बाहर आ गए, वो फिर से घुल मिल गए सोसाइटी में, उन्होंने आके एक और मर्डर कर दिया आते ही। वो आज एक जेल में है, बाकी फिर बाहर घूम रहे हैं और हमारे बीच में है। ये हमारा देखिए लॉ में सर, ये एविडेंस कलेक्शन, ये बहुत सारे लूपहोल्स हैं और उसकी वजह से कन्विक्शन रेट 30% से भी लेस है, क्योंकि एविडेंस इज वेरी क्रूशियल।
दो तीन लोग थे साथ में,
तीन,
एंड देन क्यों किया था उन्होंने, ऐसा कुछ रीजन था?
जस्ट दे लाइक द गर्ल पिकअप, वो आते जाते देखते थे, रोज जॉब से जा रही होती थी, उसको उठा लिया।
और उन्होंने बोला कि हमने किया?
हाँ हाँ, उन्होंने कन्फेस किया, कन्फेशन, बट वो माना नहीं जाता हमारे कोर्ट में।
कन्फेशन क्यों नहीं माना जाता?
क्योंकि वो हमारी पुलिस की रेपुटेशन है, वो लॉ हमारा ऐसा कहता है कि वो पुलिस तो जबरदस्ती भी कन्फेस करा लेती है, तो वो लॉ में प्रूव करना पड़ता है बाय एविडेंस, और अनफॉर्चुनेटली एविडेंस नहीं मिलते हैं। कई बार विटनेस भी परेशान हो जाती है। अब देखिए केस भी 10 साल चला, तो 10 साल में तो उनके पेरेंट्स नहीं जाते थे, मैं हियरिंग्स पे जाती थी, वो भी बेचारे सिक्योरिटी गार्ड एक कंपनी में, वो कहते थे मैं रोज छुट्टी नहीं ले सकता, तो मैं जाती थी उनके बिहाफ पर कोर्ट। तो देखिए एक प्रैक्टिकल इशू भी है, और वैसे स्टेट का केस बनता है, बट अभी भी मैंने गिव अप नहीं किया, हम फिर से उसको कर रहे हैं, हालांकि बहुत कम उम्मीद है।
टेल मी, अभी विमेन जो लॉ, विमेन अब जो पूरा लॉ है, जैसे हमारे साथ एक मेंस एक्टिविस्ट थी, उन्होंने बोला कि काफ़ी विमेन की तरफ स्क्यूड भी हो चुका है बहुत सारी चीज़ों में, राइट? तो इसमें पर्टिकुलर इस केस में या इस टाइप के केसेस में ऐसा नहीं होता दैट यू आर गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, कि अगर आज एक विमेन कोई किसी पे झूठा केस लगा देती है कि इसने मेरे साथ किया XYZ, तो पुलिस जाके उसको अरेस्ट कर सकती है?
करती है,
राइट? लॉ है कि वो उसको अरेस्ट कर देगी, तो दे आर टेक्निकली चार्जिंग कि आप गिल्टी हो, उसको उठा लिया, तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे यू सेड कि इनोसेंट होते हैं जब तक पूरे गिल्टी नहीं होते,
करेक्ट? तो यही है ना कि यहाँ सिस्टम की प्रॉब्लम है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि फेक केसेस नहीं होते हैं, हमारे पास भी आते हैं केसेस जहाँ पर हमें पता है कि लड़की झूठ बोल रही है, या मैं जज नहीं करती हूँ बिकॉज मेरे पास तो क्लियर कट, लाइक वी टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, जो पॉक्सो केसेस हैं उसमें तो फिजिकली एविडेंट इंजरीज हैं, और जहाँ गर्ल्स आर नो मोर या ब्रूटली इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज हैं, तो मुझे अपना दिमाग नहीं,
मेजॉरिटी केसेस आपके पास
मेरे पास वही हैं, क्योंकि मैं देखिए मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैं उधर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। हमारे पास आते हैं तो हम उनको अपनी हेल्पलाइन से लीगल एडवाइस देते हैं, बट मैं जानती हूँ फेक केसेज आते हैं और लोग जो मिसयूज़ करते हैं वो ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, वो ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं कि शादी का झांसा दिया, फिर शादी नहीं करी, वो लॉ में रेप है बट कंसेंट का भी एक केस है, तो ये बहुत बड़ी डिबेट है। बट मैं ये बताना चाहूँगी कि जेन्युइनली बहुत सारे केसेस जो सफ़र कर रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ ऐसी विमेन से कि प्लीज आपका किसी के साथ ग्रजेस हैं तो प्लीज रेप केस मत डालिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है जब एक्चुअल में रेप होता है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या ब्रुटैलिटी होती है, क्या होता है. फेक केसेस के अगेंस्ट मैं भी हूँ, बट अगर हमारा लॉ अच्छा हो तो इफ दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पुलिस ट्रेंड हो, तो वो तो कितना टाइम लगता है जानने में कि क्या है. अगर कोर्ट फास्ट ट्रैक, कोर्ट सच में फास्ट ट्रैक हो, सच में एक एविडेंस कलेक्शन अच्छी हो, पुख्ता हो, टीम अच्छी हो, जांच पड़ताल वाली हो, अच्छी जुडिशरी में अच्छी मतलब परख हो, तो आप वो तो फिल्टर कर लेंगे ना. वही तो करते हैं. अब बेनिफिट ऑफ डाउट एक्चुअल क्रिमिनल को देने से बेटर है कि आप उनको तो दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि ये सारा इशू सारा लॉ इम्प्लीमेंटेशन का है.
तो अगर कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस होता है, लीव दिस केस, अगर कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस होता है और वहाँ पे अक्यूज्ड बहुत हाई प्रोफाइल है, या तो बहुत पैसे वाले हैं, या बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड है, या बहुत फेमस है, जो भी है, उस केस में क्या दिक्कतें आती है?
दिक्कत ये आती है जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उन पर प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें दबाने की कोशिश होती है.
अरे
विटनेस पे इतनी प्रॉब्लम होती है, मतलब विटनेस खुद होती है इसमें, गर्ल हर सेल्फ और मे बी हर फ्रेंड्स जिनके साथ, मतलब इस केस में जिनका मैंने बताया उनकी दोस्त थी, ऐसे हर केस में होता है. और दबाव बनाया जाता है पूरा कि विड्रॉ किया जाए या स्टेटमेंट ना दी जाए या विटनेस ना दी जाए.
क्या गिव मी एन एग्जांपल.
बहुत सारे हमारे पास, हमने प्रोटेक्शन दिला रखी है.
प्रोटेक्शन मतलब उड़ाने की बात होती है कि मार देंगे उड़ाने.
और मारते हैं, इट्स वेरी कॉमन.
ये जो मर्डर करवा दिया.
हाँ सीधा, अभी हमारे पास एक केस है जिसमें लड़की को, शी वाज अ यूट्यूबर इनफैक्ट, उसको रेप करके मार दिया. और अभी उसकी सिस्टर को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसने मुझे, आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुना सकती, मतलब रेगुलर मुझे कॉल करते, दीदी आज थ्रेट कॉल आई कि विटनेस पे नहीं जाना. हालांकि उनकी विटनेस बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करेगी बिकॉज उनकी सिस्टर के साथ हुआ, वो नहीं थी वहाँ. बट ये लोग कोर्ट जाएंगे तो, अगर कोर्ट नहीं जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएगा केस, यू नो, समवेयर दे विल से कि वो घर से कितने बजे निकली थी. तो इट विल ऑल लीड टू द थिंग. तो इनको हमने, इनको सिक्योरिटी दिलाई. ऐसे मेरे बहुत सारे केसेस में हमने गनर्स दिला रखे हैं, सिक्योरिटी दिला रखे हैं, क्योंकि थ्रेट्स आते हैं और मार दिया जाता है. इन्फ्लुएंशियल अगर होते हैं, मोर देन इन्फ्लुएंशियल ना, मैं वो शब्द मैं शायद नहीं समझा पा रही हूँ.
हाई प्रोफाइल
भी नहीं, मनी भी नहीं, डेंजरस. कई गुंडे होते हैं ना जिनका ईगो, जैसे ये जो जिनकी मैं बात बता रही हूँ वो इन्फ्लुएंशियल नहीं है. जो जयपुर में जिसने इस लड़की के साथ ये किया, वो उसने ईगो में किया,
बस गुंडागर्दी में,
गुंडागर्दी
कि मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया,
अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा.
तो उस केस में डिफिकल्टीज मतलब ये होती है कि एक तो डराते हैं कि जो विटनेस है सब उसको डराएंगे, जो विक्टिम है उसको भी डराएंगे,
हमें भी डराते हैं,
जो फाइट कर रहे हैं उनको भी डराते हैं.
हमें तो पूरा डराते हैं.
एंड डराने के अलावा बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि नहीं डराया लेकिन वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं या इतने कनेक्शन होते हैं उनके कि उनके बारे में आप कुछ भी रिपोर्ट लिखा उन तक पहुँचती नहीं और नाम चेंज हो जाता है और आगे बढ़ जाते हैं.
हाँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं, अगर आप रेडी हैं तो मैं बात कर सकती हूँ.
बिल्कुल.
तो एक बाबा का केस आया था मेरे पास हरिद्वार से. वो बच्ची आदिवासी थी और वो बाबा के आश्रम में ही रहती थी. बाबा बहुत बड़े बाबा हैं इस कंट्री के, वो आश्रम चलाते हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं. वो बच्ची हमारे को किसी ने रेफ़र की, वहाँ पे भी मेरे साथ गेम किया किसी लॉयर ने, बिकॉज मेरा सोशल मीडिया स्ट्रांग है और मैं उठाती हूँ और जनरली उठाती हूँ, दिल से उठाती हूँ. मैं रो भी पड़ती हूँ विक्टिम्स के साथ, मैं इमोशनली बहुत चार्ज्ड अप हो जाती हूँ. तो मुझे कोविड के दौरान कॉल आया और उसने मुझे, एक लॉयर ने दिल्ली के, मुझे बोला कि योगिता तुम इससे मिलो, एक विक्टिम आई है और वो मेरे से लीगल हेल्प मांग रही है और वो बीमार है बहुत, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शी इज़ सिंकिंग. सो मैं उसको मिलने गई और मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी. वो फूट फूट के रोई, उसने कहानी बताई और मैंने उसका फेस कवर करके उसको रिकॉर्ड भी किया, ताकि वो हमें भी ज़रूरी रहता है क्योंकि मुझे मालूम है कई बार विक्टिम्स पलट जाते हैं. तो मैंने रिकॉर्ड किया उनकी पूरी कहानी. बिल्कुल जेन्युइन वाइब्स थी, मतलब उसके साथ हुआ था वो, इट वाज कमिंग टू मी और मुझे समझ में आता है. और वो इतना रोई, और उनके साथ बचपन में हुआ था, वो 2-4 साल पहले हुआ था. वो अब हिम्मत करके आई बाहर, जब वो आश्रम से निकल पाई तो उसने बताया कि मैं छोटी थी 12 साल की, मैं दूध लेके गई इनके रूम में, मुझे भेजा गया, हर नई लड़की को भेजते थे, एंड बाबा जी ने मेरे साथ बलात्कार किया, 4 बार किया. एक बार मैं फेंट हो गई, तो मैं फेंट थी तब भी कर लिया. He was 70+. फिर ये 4-5 साल आश्रम में रही, तो और भी डेथ्स हुई वहाँ बच्चों की, लड़कियों की. इसको कोई दवा खिलाते थे ज़बरदस्ती, उस दवा में ज़्यादा नहीं, मतलब सॉरी टू से ज़्यादा नहीं, बार बार नहीं किया, चार बार किया बलात्कार, क्योंकि कई बार हमारे पास कहानी आती है रोज ही बलात्कार हो रहे होते हैं, इनको चार बार बलात्कार किया, बट इनको आश्रम में रखा 5 साल, इनको दवा खिलाई, कायदे से उनको ट्यूबरक्लोसिस दिया गया, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी गिफ्ट की गई उनको
दवाई से, क्यों?
ताकि वो मर जाएं धीरे धीरे। ये एक प्लान्ड, ये बड़ा अच्छा उन्होंने निकाला आइडिया कि अगर मैं इसको वैसे मार दूंगा या ऐसे तो वो लगेगा नहीं, अब मैं बीमारी पास कर दूंगा, तो उन्होंने स्मार्टली इनको बीमारी दी जी। और वो लड़की बहुत ज़्यादा, अभी मैं बताऊंगी आगे क्या हुआ, तो उनको टीबी हो गया। अब टीबी उनका ऐसा हो गया कि उनका खून ही नहीं बनता था बॉडी में, तो मैं उसके इलाज में बिजी हो गई। मैंने कहा पहले इलाज कराओ फिर हम केस देखेंगे, फिर हमने बाद में पता चला, मैंने हाईलाइट कर दिया अपने ट्विटर से ये वो, तो वो लॉयर भाई साहब ने वहाँ से पैसे ले लिए, हाईलाइट करवा के वहाँ से पैसे ले लिए और केस से बाहर हो गए।
अच्छा, जो फाइट कर रहे थे तो उन्होंने बाबा के साइड से पैसे ले लिए,
उन्होंने पहले से सेट था, उनको अपना भाव बढ़ाना था, तो उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया।
ओके,
ठीक है। हमने बच्ची का इलाज कराया, बच्ची को कॉन्फिडेंस में लिया, मैंने बोला मैं तुम्हारी प्रेस रिलीज करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसका स्टेटमेंट कराया, इलाज कराया, उसको तैयार किया। और अब क्योंकि मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था, और दिल्ली में बहुत सारे डाउट्स, पॉलिटिकल डाउट्स हैं जो आजकल बड़ी बड़ी पार्टीज़ में बड़े बड़े नेता बन गए हैं, अभी एक हैं वो आए, उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि इस बच्ची का मैं सॉर्ट आउट कराता हूँ, आप मुझे हैंड ओवर, मेरे को लगा शायद सच में मदद करना चाहते हैं, वो भी बाबा के डाउट निकले, उन्होंने मुझसे नंबर लिया इस एवज में कि मैं मदद करूँगा, और उन्होंने बच्ची को नंबर वंबर लेके सेट किया और खुद भी पैसे खाए, उसको भी
बच्ची को भी
खिलवा दिए, बच्ची ने केस वापस विड्रॉ कर लिया, वो मेरे से टच में नहीं है। आज मुझे पता चलता है कि वो जेल में है, कि बाबा ने उसको किसी और केस में फंसा के उस बच्ची को ही, अब तो वो 25-26 साल की होंगी, उनको जेल में डाल दिया
बाबा ने, उस बच्ची को फंसा दिया,
डाल दिया ताकि वो बाहर ही ना आए। और वो वैसे भी वो फिजिकली बहुत बीमार थी, तो मुझे नहीं पता भी उनका क्या स्टेटस है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू हेल्प हर। तो ये कहानियाँ सच हैं और ये मेरे साथ होती हैं, और बाबा ने मुझे कॉन्स्टेंट थ्रेट्स थ्रू लॉट ऑफ पीपल, वो मैंने बताया ना वो पॉलिटिकल डाउट्स आते थे, बड़े बड़े लीडर हैं वो जिनका मैं नाम ले रही हूँ, ये लोग एग्जिस्ट करते हैं और ऐसा होता है, और ये लोग सब उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, सिस्टम हमारा अनफॉर्चुनेटली। बट यहाँ विक्टिम को मैं क्या ही बोलूँ, आई डोंट नो आप इसको कितना दिखा पाओगे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन
नहीं, डर नहीं लगता,
मुझे लगता है तभी कभी, कभी कभी ये वाला नहीं कि जैसे मुझे ये लगता है कि इस बच्ची को जैसे जेल डाला, जेल मुझे भी हो सकती थी, मेरे को भी थ्रेट आए, वो मुझे भी फंसा सकते हैं और आज भी फंसा सकते हैं, आज भी, बिकॉज ही इज वेरी,
अगर आप ऐसे बता रहे हो जैसे पब्लिक के लिए आप जा भी रहे हो,
बट मैं चाहती हूँ, मेरी कॉन्शियस मेरे को अलाउ नहीं करती कि मैं इसको अंदर रखूँ अपने, आई वॉन्ट टू शेयर, मैंने अभी भी शेयर किया था अपनी, मैं किताब लिख रही हूँ, मैंने उसमें भी लिखा है, तो मुझे मेरे,
आपको डर नहीं लगता, आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है?
मेरा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ सच है,
कभी ऐसे नहीं लगता कि
जेल जाना है तो कोई नहीं, जेल में काम कर लेंगे, जेल में बहुत रिफॉर्म्स के काम जरूरी हैं, वहाँ पे वुमेन इश्यूज बहुत हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल है, देखो जिंदगी किसी के हाथ में नहीं है, वो जो इतना पता है कि वैसे भी हमने कोविड में, मैंने बहुत दोस्तों को खोया, उससे मुझे समझ में आया, वो बहुत प्रिकॉशन से चलता था, ही वॉज अ लॉयर, ही यूज़ टू हेल्प मी विद माई केसेस, वो इतना स्वीट था, वो मतलब वो एक चींटी से भी डर जाता था, मतलब उसने इतना प्रिकॉशन लिया, ये नहीं करना वो नहीं करना, बट कोविड में उनकी जान चली गई, तो हम सोचते थे वो इतना प्रिकॉशन लेते थे, तो मैंने तब से सोच लिया कि डेथ आपके हाथ में है नहीं, आपके पास 10 अटैक हो जाएंगे और आपके पास 1 अटैक हो जाएगा, आप वैसे भी, आई हैव लॉस्ट सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ लेट कि मेरा वो डर खत्म हो गया मौत से, मुझे लगता है वो तो वैसे भी आ जाएगी, वो वैसे भी आ सकती है, तो इट डजेंट मैटर। अब रही बात जेल की, जेल इज़ अनदर फियर, और उसके अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो जेल का है तो जेल में काम कर लेंगे कोई।
तो रेप केस को रिपोर्ट करते समय विक्टिम को क्या क्या चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है?
चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, पहले तो उसके घर वाले ही नहीं मानते हैं, उसके दोस्त ही नहीं मानते, आई थिंक दोस्त शायद मानते हैं, दोस्त शायद सपोर्ट करते हैं हमें, जहाँ तक जितने भी केसेस लाए हैं हमको ज़्यादातर फ्रेंड्स लेकर आते हैं, अगर हम वो वाले केसेस की बात की जाए, फिर पुलिस स्टेशन तक जाना, और पुलिस, आप एक बार हमारे साथ वो एक हिडन कैमरा से चल के देखिए कितना, मतलब अभी तो हमारा चलो टच उट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो हम कुछ कर पाते हैं, नहीं आप रैंडम वॉक इन करके जाओ कि मुझे रेप की कंप्लेंट करानी है, उस लड़की का अनदर रेप हो जाता है, मतलब इन द पुलिस स्टेशन की, अगर वो अकेले गई है तो वो बिठा देंगे, वेट कराएंगे, फिर रजिस्टर नहीं करेंगे, फिर खुद ही कमेंट्स करेंगे, खुद ही अपनी जजमेंट दे देंगे, मतलब इतना हरासमेंट करते हैं, पहले तो एफआईआर होती नहीं, फिर एफआईआर हो भी जाए तो उसके बाद से जो मैंने आपको बताया 10-10 साल लड़के, आप में कितनी हिम्मत बचेगी आप बताओ मुझे, कितनी हिम्मत बचा सकता है कोई, कितना हौसला दिखा सकता है? इट इज़ नॉट ईजी।
अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस कि जब किसी का रेप होता है और वो रिपोर्ट करने जाते हैं तो उस टाइम पर फैमिली को या फ्रेंड्स को जो भी रिपोर्ट करवा रहे हैं उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ताकि वो मिस्टेक्स ना करें एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एवरीथिंग?
सो वी हैव दिस मैनुअल जिसमें हमने, मतलब हम चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, इनफैक्ट इवन यू एनीबडी हु वांट्स टू हेल्प अ विक्टिम, कि कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको एविडेंस, जैसे कि क्योंकि सब कुछ एविडेंस पर है,
क्या मिस्टेक्स करते हैं
जो शावर
वाले?
ले लेते हैं, एविडेंस कलेक्शन नहीं हो पाती है, कपड़े बदल देते हैं,
okay,
कपड़े
so after
देते
rape,
हैं।
कपड़े नहीं बदलें एंड
yes,
शावर नहीं लें
जी, मेडिकल कराएं, खुद चले जाएं मेडिकल कराएं, पुलिस को रिपोर्ट करें, रेप क्राइसिस सेंटर्स हैं अभी हमारे देश में, वहां चले जाएं, हेल्पलाइन की सपोर्ट लें, एक इमीडिएटली हमारे हेल्पलाइन के थ्रू भी रीच कर सकते हैं, आई कैन शेयर दैट नंबर, एंड दैट्स हाउ यू नीड टू फॉलो सर्टन प्रोटोकॉल, बट नोबडी इज प्रिपेयर टू गेट रेप्ड, आई एम सॉरी, बट वही प्रॉब्लम है ना कि दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, मतलब एविडेंस को संभाल के जितना रख पाएं वो बहुत ज़रूरी है, और हो ही ना किसी के साथ सबसे पहला, तो ये ऐसा ही होना चाहिए।
क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग जिसकी वजह से हार जाते हैं? बस यही है
एविडेंस,
एविडेंस तो एविडेंस, और क्या कलेक्ट कर सकते हैं? डू यू थिंक कि जिस स्पॉट प्लेस पे हुआ
अगर
उस
आप
प्लेस की प्रॉब्ली
कुछ
मिट्टी
कुछ
उठा दें, कुछ
नहीं, मतलब मिट्टी तो वो मर्डर केस ही वो, हाँ डिपेंड आप जितना आप कर पाएं, बट किस में कितनी उस समय सोच होती है करने की। मेरे पास एक बच्ची है, शी इज़ अ रॉक स्टार बाय द वे, आप कभी उसको इंटरव्यू कीजिए, उनका बलात्कार हुआ 7 दिन तक, 13 साल की वो बच्ची,
13 साल में 7 दिन तक,
हाँ जी, और 6 लड़कों ने लगातार रोज सुबह शाम, मतलब उस छोटी सी मतलब जान को उन्होंने क्या नहीं किया। शी इज़ माई, शी वर्क्स विद अस नाउ, शी इज़ अ रॉक स्टार लिटरली नाउ, इट्स बिन 10 ईयर्स हो गए अभी, वो 21-22 साल की हैं, शादी हो गई है, वो हमारे साथ अब काम करती हैं। तो जब हम उनको हॉस्पिटल मिलने गए तो मतलब वो क्रिटिकल थी, उन्होंने अपने एविडेंस संभाले, कैन यू बिलीव, मतलब आप सोच सकते हैं कि उन्होंने एविडेंस संभाले अपने, उनको उन्होंने बलात्कार करके गोली मार दी, 2 गोली मार दी और उसको फेंक दिया इन द फील्ड टू डाई, इनफैक्ट इन द वेल, कुएं में फेंक दिया उसको, छोटी सी बच्ची थी वो, रात भर कुएं में पड़ी रही ठंड के दिनों में। अगले दिन जब उसको निकाला गया, गांव वालों को लगा कि कोई डेड बॉडी है, जब निकाला गया उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसने तब भी एविडेंस संभाल के रखे थे।
क्या एविडेंस हुआ?
उसने बुलेट जो उसके लगाई उन्होंने अपनी पॉकेट में रखी, अपने कपड़े, मतलब जो भी एविडेंस थे उन्होंने, मतलब खुद से अपना सोच, 13 साल की बच्ची, तो कई बार आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है ऐसा, बट मोस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई इतना दिमाग चला पाता है। तो वो बच्ची फिर रिकवर हुई, मैं उनको हॉस्पिटल में मिली, फिर वहाँ से हमने उनको अडॉप्ट किया और आज वो हमारे साथ काम करती हैं और बाकी विक्टिम्स को मदद करती हैं, एंड शी इज़ रिकवर्ड फाइन, शी इज़ फुल ऑफ लाइफ, शी वॉन्ट्स टू टेक अप द थिंग्स, यू नो, तो ये एक सक्सेस स्टोरी है और ये सब भी चल रहा है।
वैसे
केस वो थक जाते हैं, मतलब हर
अभी भी चल रहा है, 6 होकर जेल नहीं हुई है?
जेल में ही है बट सजा नहीं हुई है।
ओके,
वो भी बाहर है सारे,
6 के 6 बाहर हैं।
हाँ बाहर है,
जेल थोड़े दिन गए और फिर वापस बाहर,
कोविड में छोड़ दिया, परोल दे दी, जेल में जगह नहीं है, 2-3 को ऐसे छोड़ दिया, कोई माँ के बहाने कि माँ की डेथ हुई, दादी की डेथ हुई, एग्जाम देना है, सब बाहर है और बाहर से अंदर नहीं गए अभी तक, तो हमने फाइल किया हुआ है कि वो अभी तक बाहर कैसे हैं।
तो पुलिस पे पकड़ती नहीं,
बेचारी की जान को फिर से खतरा होता है, तो हमने इनको कहीं रखा है।
तो पुलिस पकड़ती नहीं क्या, वो बाहर चले गए तो फिर फॉलो अप नहीं होता कि भाई कहाँ हो क्या हो?
फॉलो अप्स होते हैं, अब कोई बहुत ज़्यादा वाटर टाइट कोई बोलो नहीं है।
तो अगर इस शहर में किसी ने किया, उस शहर से बाहर निकल के दूसरे चले गया, जा सकता है, तो यहाँ की पुलिस इन्फॉर्म नहीं करती कि आप देखो पूरे इंडिया में कुछ?
नहीं पड़ी है उनको, वो एक केस की बता रही हूँ जो हमारे पास है, सोचिए हमारे पास वो केस है, वो परोल दे दी, परोल उसका राइट है, उसके बाद वो वापस ही नहीं आए, अब हमने डाला हुआ एप्लीकेशन, वो लगा
रहेगा। क्या होता है इन सिंपल,
मतलब वही कि वो दे कैन गो अटेंड सम इवेंट और समथिंग, कोई फैमिली में परोल इज लाइक
कि 3-4 दिन
काइंड ऑफ अ थिंग, या
3-4, क्योंकि उनका जेल में बिहेवियर अच्छा था तो इसकी वजह से उन्हें 3-4 दिन की छुट्टी दे देते हैं, क्योंकि उनके घर में डेथ हुई है या
कोई भी काम है,
कुछ काम है इमरजेंसी,
तो ये सिनेरियो है।
इंडिया में जस्टिस मिलने में इतनी दिक्कतें क्यों होती है, बैरियर्स क्या क्यों आते हैं?
जस्टिस मिलता नहीं है,
क्यों मिलने के लिए क्यों इतने बैरियर्स होते हैं?
देखिए बैरियर्स तो बहुत सारे हैं. अगर हम लीगली बात करें तो पहले तो सोशली सपोर्ट नहीं है उस बच्ची को, वो हमने बात कर ली. अब जब लीगल आता है तो लीगल में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. स्टेक होल्डर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो आपका अभी वुमेन मिलती है रेप केसेस में. वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ट्रेनिंग, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास और 10 तरह के केस हैं. उनकी जब मैं उनकी सुनती हूँ, क्योंकि मैं पुलिस ट्रेनिंग भी करती हूँ, मैं पुलिस के साथ भी जुड़ी हूँ, जब मैं उनकी समस्या सुनती हूँ तो मुझे उनकी भी जेन्युइन इश्यूज दिखते हैं कि उनको इतना काम दे रखा है सरकार ने. वीआईपी की प्रोटेक्शन भी उनको करनी है, मर्डर की जांच भी उनको करनी है, ये केस भी करना है, वो केस. उनके पास डेडिकेटेड वन केस नहीं है और उनको सेट प्रोटोकॉल्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती. उनको गाड़ी भी इतनी थकी हुई गाड़ियाँ, ना उनकी नींद पूरी हो पाती है. ओवरलोडेड, ओवरवर्कड, एग्जॉस्टेड हैं वो. उनके पास कहाँ ब्रांड विथ है कि वो अपने स्पेस में किसी को जस्टिस दिलाने की उनकी झील ही खत्म हो जाती है. और अगर है तो, वैसे तो मोस्ट ऑफ देम गेट करप्टेड विद द होल सिचुएशन ऑफ मनी एंड एवरीथिंग. जो थोड़े बहुत सही भी हैं, बट वो कितना ही जोश से काम कर पाएंगे आप बताइए. आपको कोई सपोर्ट ही नहीं है, ना ट्रेनिंग्स नहीं है, आपको कोई अवार्ड नहीं है, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं है डूइंग सच अ जॉब. तो वो थके हुए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं केस. वो मेन होता है, दे आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द विक्टिम. वो बड़ा थकेरे तरीके से अपना रिप्रेजेंट करते हैं. फिर विटनेस की बारी आती है. वो लड़की हमारी जैसी संस्था से जुड़ती है तो शायद कोई उम्मीद हो, बट अगर वो खुद से जाती हैं तो उनको कोई गाइडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं होती. फॉरगेट अबाउट कि हम जैसे एनजीओस तो बाद में आते हैं, आपकी पर्सनल फैमिली सपोर्ट नहीं करती है आपको कि आप जाओं कोर्ट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. और फिर आप विटनेस नहीं दे पाते हो या ठीक से नहीं बोल पाते हो, तो उस चक्कर में भी बहुत इश्यूज़ होती हैं. फिर लॉयर, जो आपको सरकारी वकील मिलते हैं, आप प्राइवेट हायर करो तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो. तो अगर आपने सरकारी वकीलों से मदद ली तो वो सरकारी थकेले वकील होते हैं, सॉरी टू से, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. मतलब उनको कोई झील नहीं है. अगेन, उनके लिए इट्स अनदर केस. दे आर वेरी इनसेंसिटिव, बट आई थिंक देयर प्रोफेशन इज सच. आई डोंट वांट टू, यू नो, पुट एवरीबडी इन द सेम कलर, बट येस. सो देर इज़ नो पैशन टू गेट देम जस्टिस फ्रॉम एनी कॉर्नर. तो जज के सामने जब फाइल जाएगी तो वो तो फाइल देखेगा ना. एफएसएल की रिपोर्ट ही नहीं आई एक साल तक, तो वो एफएसएल की बेस पे तो कुछ शुरू करेंगे. फिर विटनेस होगी, मतलब इट्स सीरीज ऑफ कोर्ट डेट्स. पहले पहुंचो तो आज जज की छुट्टी है, आज जज नहीं आए. पहले बता दो यार, कोई इतना हम चांद पे जा रहे हैं तो पहले से इन्फॉर्म करो आज जज नहीं बैठेंगे. निर्भया के समय हम लोग कोर्ट पहुंच जाते थे, निर्भया की मदर के साथ हम बैठे रहते थे, आज जज नहीं आए. मतलब हम पूरा दिन लगा के वहां गए, पास बनवाया, बैठे और हेयरिंग ही नहीं है. ऐसे बहुत बार होता था. इट्स लाइक यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द होल थिंग. इवन जुडिशरी आधा टाइम छुट्टी पे रहती है. आई वॉन्ट कि दिस सिनेरियो शुड चेंज. वी शुड हैव कि एवरीबडी शुड हेल्प ईच अदर. इट इज़ नॉट माई पर्सनल ड्यूटी. मैंने कोई ठेका तो ले नहीं रखा था कि मैंने सोचा था मैं ही हूँ, आई एम अ क्रूसेडर. ऐसा नहीं है. इट इज़ एवरीबडीज जॉब, बिकॉज बच्चियाँ हर घर में हैं, औरतें हर घर में हैं. इट इज़ आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क टूवर्ड्स दिस. तो मैं चाहती हूँ कि एवरीबडी शुड टेक पार्ट इन इट, एंड दैट्स वाई वी क्रिएटेड दिस, कि ये पढ़ के कोई भी मदद कर सकता है. एनीबडी कैन हेल्प, एंड वी नीड टू चेंज द थॉट माइंड.
ये कहाँ से ले सकते हैं लोग?
आई कैन, यू कैन रीच आउट, कॉपी आई कैन शेयर.
नहीं मतलब ऐसे, कैन पीपल बाय दिस?
एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट.
फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कहाँ से ले सकते हैं?
प्रिंटिंग आप खुद कराएंगे तो हम उनको ई कॉपी भेज देंगे.
अच्छा, ऑनलाइन इधर लिंक होगी, आप हमको लिंक भेज देना, वी कैन पुट दिस लिंक अंडर, सो दैट पीपल इफ जिसको पढ़ना है वो पढ़.
या तो वही है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
क्या है इस गाइड में पूरा प्रॉपरली.
सी इट सेज महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, स्पेशली सेक्शुअल वायलेंस की रोकथाम मीन्स प्रिवेंशन, निवारण मीन्स addressing them, redressal, and punarvas means rehabilitation. So we only don't make noise, we also work for their rehabilitation. So wo to hum karte hi hain. We try whatever resources we have. I'm not saying I'm the best or we are doing whatever in limited capacity, whatever we have, we are doing. Nivaran means, matlab agar jaise wo hospital mein hai aur compensation aane mein 2-2 saal lag jate hain, usko abhi to immediate help chahiye na, medical. To hum असिस्ट करते हैं, मेडिकल असिस्ट करते हैं, लीगली असिस्ट करते हैं, उसको सोशली असिस्ट करना है, उसकी काउंसलिंग होनी है, उसका साइकोलॉजिकल जो भी है. एंड प्रिवेंशन इज़ माय बिगेस्ट मैंडेट, कि रुके कैसे. उसमें हम लगातार एडवोकेसी करते हैं. मैं वाई आई मीट ऑल दिस पॉलिटिशियंस ओनली फॉर दैट. मेरे को कोई पर्सनल पीआर नहीं है. मुझे ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं. मैंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था सरकार को, आई थिंक इट विल हैपन सून, बिकॉज बीच में कोविड हुआ, फिर बहुत सारे पेंडिंग थे चीज़ें, कि हम एटलीस्ट मिनिमम टू डेज इन द पार्लियामेंट, आप साल में इतने दिन पार्लियामेंट चलती है, कभी कुछ डिस्कस होता है, आधा टाइम लड़ाइयाँ भी होती हैं, बजट डिस्कस होता है, तो वुमेन के इश्यूज क्यों नहीं डिस्कस करते डेडिकेटेड? कम से कम साल में एक या दो दिन दे दीजिए, सिर्फ वही चर्चा होगी. व्हेन यू कम आउट विद सॉल्यूशन यू कैन डू समथिंग्स अबाउट इट ना, तो कुछ तो आप कर पाएंगे. और एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू, वो बोलने के लिए ठीक है, बट हमें बहुत सारे कदम उठाने हैं, उसके लिए चर्चा बहुत ज़रूरी है. डिस्कशन लाइक दिस, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल माइट से कि आप एक पॉडकास्ट करें, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दिस मैसेज कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्प्रेड दिस मैसेज. और बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, ठीक है, बेटे को समझाओ और बेटे को समझाओ और पढ़ाओ, बेटे को बताओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कि बच्चियों से तो आपने बहुत बात कर ली, बेटों से कब बात करोगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए.
कुछ इशूज़ हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत प्रोवोक करते हैं, कि इनके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, इनके साथ ऐसा हो जाना चाहिए. हर इंसान के साथ कुछ इशूज़ होते हैं तो बहुत क्लोज होते हैं, राइट? एंड आई वॉज स्पीकिंग टू, मैं एक IG सर है, मैं उनसे बात कर रहा था कि ऐसा क्यों है, कि ऐसे क्यों होता है. और उन्होंने मुझे काफ़ी जस्टिफिकेशन आंसर दिया था कि समटाइम्स कुछ लोग जो एक्ट ऑफ डिज़ास्टर होता है या ऐसे जो एक्ट्स होते हैं, इन सारे एक्ट्स वो उनकी करंट मेंटल स्टेट की वजह से करते हैं. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या सिचुएशन में होते हैं उसकी वजह से करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को सेकंड चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो किसी ना किसी गलत चीज़ों की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है. नॉट everyone इज़ इन दिस कैटेगरी, हर कोई इस कैटेगरी में नहीं होता, बट कुछ लोग इस कैटेगरीज में होते हैं. तो डू यू थिंक दैट इज़ अ फेयर जस्टिफिकेशन?
फॉर रेप देर इज नो जस्टिफिकेशन, फॉर मर्डर आई कैन से दैट. मर्डर फिट ऑफ रेज में हो सकता है, रेप फिट ऑफ रेज में नहीं हो सकता. इट्स योर अर्ज विच यू कैन एक्चुअली कंट्रोल and channelize it. Women also get urge, aisa nahi hai, but they don't.
But do you think it, a lot of time this also happens because of revenge?
Haan, revenge mein hota. So revenge is again not fit of rage, it is pre-planned thing. Revenge le rahe ho to aap plan karke ek rape kar rahe ho na. So again there is no justification to rapes for this particular aspect. आप मर्डर के लिए आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, माफ़ी दे सकते हो. अ मर्डरर कैन बी रिफॉर्म्ड, अ रेपिस्ट कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड, अ रेपिस्ट विल रिमेन अ रेपिस्ट.
ट्रूली
100%.
कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसे केस सुना
आते हैं बाहर आके फिर से वही कांड करते हैं, दे रिपीट द सेम थिंग्स.
तो उनकी मेंटालिटी क्या होती है, मतलब व्हाट डू यू, व्हाई ये क्यों? कभी किसी से बात करी या कभी किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करी जो रेप क्रिमिनल्स के साथ बात कर, जो रेपिस्ट होते हैं उनसे बात करते हैं या उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं?
जी बिल्कुल. मेरी खुद इंटरेक्शन में रेपिस्ट से नहीं करी है, बट मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को सुना है और उन्होंने बात की है. आपने अगर निर्भया के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, इंडियाज़ डॉटर्स, जो बैन हो गई थी बाद में इंडिया में, उनकी डायरेक्टर हमसे मिली थी, हमने उसको लॉन्च भी किया था इधर, तो उसमें जब उन्होंने कवर किया निर्भया के ही, अगर आप क्रिमिनल्स की बात करें, तो उन्होंने बोला कि मैंने उसको रेप किया क्योंकि वो रात को बाहर थी, मुझे लगा अवेलेबल है, वो बॉयफ्रेंड के साथ थी, वो रात को बाहर क्यों थी, उसने जीन्स क्यों पहनी थी. ये टिपिकल मेंटालिटी, इसलिए आप बार बार मुझसे डिसअग्री करेंगे बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस, बट ये बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस है. कहीं ना कहीं वो उसको करेज देता है कि लड़की ने जीन्स पहनी है, ये चालू है. अच्छा आप बताएं कि वो देर रात को घर से बाहर क्यों थी, या उसने छोटे कपड़े क्यों पहने थे, ये सारी बातें निकल के आई हैं. और लड़कियां तो मिठाई का डब्बा होती हैं, अगर बंद नहीं, ये बात बोली थी निर्भया के रेपिस्ट ने कि लड़कियां तो मिठाई का डब्बा होती हैं, अगर खुला छोड़ोगे तो चींटियां आएंगी. दिस इज़ अ स्टेटमेंट, आप सुनना उसको कभी. और ये बहुत सारे रेपिस्ट की मेंटालिटी है.
मतलब ये कॉन्वर्जेशन यूजुअली उस पार्ट तक तो पहुँचेगी नहीं जिन लोगों को समझना चाहिए, जहाँ तक पहुँचना चाहिए, राइट? तो वो जहाँ नहीं पहुँचती, जिन लोगों का एजुकेशन नहीं है, जिनको पता नहीं है, उन लोगों में ज़्यादा केसेस होते होंगे, राइट? ये
एब्सोल्युट
रेप केसेस वहाँ पे, जो ड्रॉप आउट से जो आप बात करते हो, जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जिनको
रैग पिकर्स, रिक्शा पुलर्स,
देयर मोर,
उनको कैसे आप सेंसिटाइज करोगे, ये बड़ा चैलेंज है ना. तो वो तो सारा टाइम इंस्टा देखते रहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हम करें, पॉजिटिव चीज़ें जैसे हम आप कर रहे हैं, उन तक कोई मैसेज पहुँचे. क्योंकि आजकल फ़ोन सबके हाथ में है, चाहे वो ड्रॉप आउट है या स्कूल जा रहे हैं. हम अगर ऐसा कंटेंट उन्हें दें और ऐसी चीज़ें बता पाएँ जिनसे थोड़ा सा सुधार आ पाए, तो मुझे लगता है अपने आप में बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा. अब उनकी क्या ही अपब्रिंगिंग की बात करेंगे, जब वो उनके घर में खाने को ही दो वक्त का नहीं हो, और वो उनकी माँ क्या ही उनको संस्कार देगी, जो कि अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में लगे रहेंगे. उनको हम ना संस्कार सिखा सकते हैं ना कुछ. और अर्ज तो उनको भगवान ने दिया है, तो वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज़ दे कांट इवन अफोर्ड अ सेक्स, पेड सेक्स, जो कि हमारी जो ब्लेस्ड कम्युनिटी है या ब्लेस्ड पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं दे हैव आउटलेट. ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, देन देर इज़ अ फैक्टर जो आप पहले भी मुझसे पूछ रहे थे कि अवेलेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी. उन्हें एक छोटा बच्चा देखते हैं जिसके माँ बाप माइग्रेंट्स हैं, वो काम पे गए हैं और बच्चा घर में अकेला है, तो वो बच्चे को पकड़ते हैं. दैट्स वाई हमारे पास इतने केसेस आते हैं. माइग्रेंट्स दोनों माँ बाप को काम करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग अनअटेंडेड छोड़ के जाते हैं. एंड देन दैट पर्सन जिसको हम कैसे सेंसिटाइज करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है. मेरी किताब में भी हम बार बार इसी को घुमा फिरा के सोच रहे हैं कि इन तक कैसे पहुँचे, इनको पेनिट्रेशन कैसे हो कि यहाँ तक जा पाए हम, कि इनको इनका दिमाग कैसे चेंज होगा, हाउ विल वी चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ दीज पीपल. क्योंकि ये लोग तो बच्चे को पकड़ लेते हैं. अच्छा, दो फैक्टर कॉमन पाए गए हैं हर केस में, पोर्नोग्राफी थी और शराब पी थी. मैं ये अब मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगी पोर्नोग्राफी का क्या साइड इफेक्ट है या पोर्नोग्राफी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए. वी आर नॉट रेडी अभी एज अ सोसाइटी. फिर हम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर बहुत सारी चर्चा करने की ज़रूरत है. मैं अकेले आई एम नॉट कि मैं बहुत एक्सपर्टी से बोल दूँ ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए. मैं कोई ऐसी नहीं हूँ. हम भी ओवर द ईयर यही सोच रहे हैं, ये चक्र चल रहा है कि हम लोग आपसे जैसे बात करें कुछ निकल के आएगा. अब मैं किताब लिख रही हूँ, उसमें हम चर्चा लिखेंगे. मैंने लोगों से बात की, हमारी किताब जो आने वाली है हम उससे लोगों से पूछ रहे हैं कि व्हाट्स द सॉल्यूशन. मेरी किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप रेप्स. हम जाके लोगों से बात करें, इन्हीं इसी कम्युनिटी, जैसे हम लोग जो रैग पिकर हो गए या ऐसे मतलब मिडिल क्लास या अंडर प्रिविलेज सेक्शन में ही जा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं उनसे कैसे रुकेंगे. फिर मैं पॉलिटिशियंस पे भी जा रही हूँ, सेलिब्रिटीज़ को भी पूछ रही हूँ कि कैसे रुकेंगे. तो जब हम यही सवाल पूछते हैं तो यही जवाब आता है कि मैं हर चीज़ का एक्सपर्टी से जवाब नहीं दे पाती हूँ कि आपको क्या मिला. आपने पोर्नोग्राफी, ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ जो हमको चार्जशीट में वो खुद बोलता है कल्प्रेट कि मैंने पोर्नोग्राफी देखी थी मेरे फ़ोन में. उसका फ़ोन भी रिकवर होता है तो उसमें पोर्नोग्राफी दिखती है वो सर्च में, और शराब पी थी और छोटा बच्चा उठाया. अब बताओ उसका तो डीकोडिंग आई थिंक आपके थ्रू हो जाए तो बेटर है. फिर हमें क्या करना चाहिए. अब शराब बैन आप एक दो स्टेट्स में कर चुके हैं, फिर शराब बैन कितना करेंगे और शराब बैन कौन सी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं. मतलब बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होने की ज़रूरत है. दैट वुड आई से.
ओके, लास्ट 3-4 क्वेश्चन हैं मेरे पास. सो वन इज अबाउट कि एक कपल है जो दोनों एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में है और वो सेक्सुअली एक्टिव भी हैं, फिर उसके बाद दोनों नहीं शादी नहीं करते और दोनों अलग हो जाते हैं, राइट. लेकिन उसके बाद द वुमेन कैन पुट अ केस ऑन मैन, और लड़की ये केस कर सकती है कि मेरे से शादी का झूठा वादा करके इसने मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाए, राइट. और वो केसेस अब बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं. तो जो ऐसे केसेस
हैं,
एंड इनफैक्ट अभी जो ये है सेक्शन 69 जो नया बन रहा है उसमें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर फॉल्स इन रिगार्ड्स ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, वो तो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा क्रूशल और डेंजरस पनिशमेंट के बहुत सारे प्रोविजन डाल रखे हैं, राइट. डू यू थिंक दैट्स राइट.
सी, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि इसमें विमेन को समझ, देखो लॉ भी उनके फेवर में बन गया, बट दे शुड,
बट यू थिंक दिस लॉ शुड बी देयर कि,
बट एट द सेम टाइम एडवोकेट मैरिटल रेप. देखो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता आपने शादी की है या नहीं की है, लाइक मेरा ये मानना है कि कंसेंट है कि नहीं है वो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए. नो मीन्स नो, जो हमने सुना है, चाहे वो शादी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर वो स्ट्रेंजर है. सो कंसेंट का बड़ा रोल होना चाहिए. कंसेंट जब वो रिलेशनशिप में थी तो कंसेंट था ना, तो कंसेंट शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर. आइडियली तो वही होना चाहिए. तो अगर मैरिटल रेप में भी मैं बहुत बोलती हूँ कि मैरिटल रेप को रेप माना जाना चाहिए.
या
क्योंकि अगर
मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है,
वही देखिए ना हिपोक्रेसी कितनी है. मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने में सोच रहे हैं कि वो तो उसमें कैसे पता चलेगा फोर्स किया था. अरे वो वाई वुड अ वुमन कम आउट एंड से, या तो उसमें भी आप पुख्ता कीजिए लॉ को.
नहीं, उसमें मैरिटल रेप में, लेकिन एक जो डाउरी वाले केसेस है, डिवोर्स वाले केसेस है,
वो डालेंगे
गेटिंग देन.
तो कहीं ना कहीं आपको टाइट मैकेनिज्म, टाइट वाटर टाइट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, व्हिच आई कंप्लीटली अग्री कि बहुत मुश्किल है मैरिटल रेप में, इसीलिए हमने उसको मतलब रेज किया. हम चाहते हैं कि उसमें इसमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन थ्रू यू. आई वॉन्ट टू टेल ऑल दीज वुमेन हु वॉन्ट टू मिस यूटिलाइज और यू नो काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसका बुरा इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मत कीजिए, क्योंकि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. आप एक इनोसेंट जिनके साथ सच में हो रहा है उनको आप वो कर रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं अपने जस्टिस से, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेटेड वुमेन की ज़रूरी है. मैं ऑफकोर्स आई एम नॉट डिनाइंग कि जो बेचारी यूज़ नहीं कर पाती हैं वो सफ़र करती हैं, जो यूज़ करती हैं वो मिसयूज़ ही जैसे मतलब सीधा मिसयूज़ ही हैं, और वो मिसयूज़ सारा एजुकेटेड क्लास है बाय द वे.
मिसयूज़ सारा एजुकेटेड क्लास है, तो यू आर टेलिंग कि अनएजुकेटेड के साथ गलत हो रहा है
वो बेचारी
और एजुकेटेड गलत कर रहे हैं.
एजुकेटेड वाले जो अनएजुकेटेड है बेचारे के पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है अपनी बात उठाने का. हम जाते हैं उनके पास तो हम बोलते हैं. आप सोचिए, मैं एक जगह पे एक वर्कशॉप कर रही थी अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ वुमेन के साथ, तो उनमें से एक महिला बोली कि मुझे जल्दी जाना है. तो मैंने कहा आपको क्यों जल्दी जाना है, तो बोली कि मुझे घर जाना है, मेरा हस्बैंड मुझे मारेगा नहीं तो. तो मैंने उन्हें बोला आप लेट जाएंगे तो उसके लिए भी मारेगा, तो बोल रही है हाँ तो मारना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं लेट जा रही हूँ और अगर मैं नहीं पहुँच रही हूँ टाइम से तो खाना नहीं दे रही हूँ उसको, तो पिटना तो मेरा हक है. सो दिस इज़ ए कंडीशनिंग. तो वो उनको मुझे मैरिटल रेप तक बताना कि तुम्हारे साथ करता है गलत, हाँ मैडम बहुत गलत करता है, अननेचुरल भी करते हैं और मैं बहुत चिल्लाती हूँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ, पर क्या हो गया, पति है उसका हक है. तो उनको ये भी नहीं पता कि वो मतलब दे कैन से नो, एंड उनको ये भी नहीं लगता कि वो पी के आता है, उसको कुछ नहीं पता वो वट ही इज़ डूइंग, यू नो ही इज़ टॉर्चरिंग हर सेक्शुअली. मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव कम टू अस, वो कंप्लेन नहीं करने आई हैं, वो हमने पूछा उनसे बातों में तो उन्होंने बताया दैट टू इन अ वेरी नेचुरल प्रोसेस कि ये तो नॉर्मल है ना मैडम. उनको उस लेवल तक लाना रिपोर्टिंग तो बाहर दूर की बात है. और यहाँ पर हमारे पास आती हैं पढ़ी लिखी कुछ महिलाएँ जिनका हमको पता है कि वो बोल रही हैं अरे मेरे को तो केस ठोकना है, मैं उस पर अननेचुरल सेक्स का भी डाल दूंगी, मैं उस पर रेप भी डाल दूंगी, तो फिर मैं गेट टू गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस. डाल दूंगी क्या क्या होता, हुआ तुम्हारे साथ, नहीं हुआ नहीं, आई वांट टू पुट, फिर मैं गेट टू गेट लॉस्ट. ये लैंग्वेज से ही आप पकड़ लेते हो ना.
ओके, आई वाज जस्ट आस्किंग बिकॉज अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बात कर रहे थे, लाइट डिटेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ये टेक्नोलॉजी है कि नहीं है?
है तो कर लो,
ये वर्क करता है
कहीं हद तक करता है, देखो है
तो फिर तो क्रिमिनल्स पकड़ा जाने चाहिए.
तो ये नहीं कर रहे ना,
क्यों?
यहाँ पे बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं, फिर बहुत सारी रिसर्च. वो
तो अगर लाइट डिटेक्टर में पता चल गया कि इसने ये किया, बट लाइट डिटेक्टर इस सही चीज है कि नहीं है ना, कि
काफी हद तक सही है. अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट काफी हद तक सही है, करते है ना लाइट डिटेक्टर,
नार्को टेस्ट, लाइट डिटेक्टर.
तो वो केमिकल जब जाता है बॉडी में, यू स्पीक एज इट इज, यू नो यू डोंट, यू कैंट मैनिपुलेट, फिर आपकी वो ब्रेन ले. तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आप कर लो यार. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, आप 50,000 चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में, आप करो, आप सारी चीज़ों के टेस्ट करो, तो वो रिपोर्ट करने वाला भी 100 बार सोचेगा. और पुट द फाइन, रिवर्स फाइन, अगर सच नहीं निकला तो महिला पे भी फाइन करो ना, कर दो
कि जिसने फेक केस लगाया उस पे.
एग्जैक्टली, तो आपने आप फिल्टर हो जाएंगे काफ़ी हद तक.
ओके, लास्ट क्वेश्चन, बट वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज़ कि कैसे कोई पोस्ट रेप ट्रॉमा से या पोस्ट सेक्सुअल असॉल्ट ट्रॉमा से बाहर निकल सकता है.
देखिए बहुत मुश्किल है.
इसका सेकंड पार्ट मैं इसके बाद पूछूंगा, पहले आप बता फर्स्ट इसी का.
अच्छा, सो व्हेन व्हेन यू रेप, लाइक व्हेन, लाइक अ वुमन इज रेप्ड, हर सोल इज डिस्कार्डेड कम्प्लीटली. सो वो स्कार जो है उसकी आत्मा पे पड़ता है, वो शरीर की इंजरीज हील हो जाती हैं. ठीक है, मे बी हील फिजिकली, बट वो जो स्कार्स हैं उसकी लाइफ टाइम रहते हैं. तो वो उसको हील करना इज़ अ टफ थिंग. और मैं बोल दूँ कि सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन है, यू नो जैसा कि मैं एक बच्ची का उदाहरण दे रही थी जो 13 साल की बच्ची है. अगर उनसे केस की बात करें तो शी इज़ वेरी नॉर्मल, बहुत मूव ऑन कर चुकी हैं लाइफ में. फिजिकल इंजरीज अभी हैं उनको राधा, पर मेंटली वो रिकवर कर चुकी हैं. सो हर एक का अपना हीलिंग प्रोसेस होता है, तो हर एक की अपनी एक नेचुरल प्रोसेस भी होती है. तो मैं ये नहीं कहूँगी सबका सेम है, बट वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी. और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत प्रॉब्लम है कि उनकी काउंसलिंग और एक्सपर्ट्स तो हमारी संस्था पूरी कोशिश करती है हम अपने लेवल पे जितना कर पाएं, बट सपोर्ट सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है हमारा और समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम या तो बिल्कुल ही दया दृष्टि से देखेंगे या बिल्कुल ही उसी को जज करने लगते हैं। मैं एक अभी लेटेस्ट, मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं अभी एक हमारी सर्वाइवर है, विक्टिम भी नहीं बोलना चाहती मैं, सर्वाइवर है, शी वॉज गैंग रेप्ड इन हरियाणा, she was 19 year old, ठीक है, she was president awardee, president of India ने उनको 26 जनवरी को award दिया था, जो India gate पे parade होती है, because she was a topper in Haryana, 100 out of 100 in all subjects, topper, 10th में उन्होंने ये marks लाए, 12th के बाद वो coaching जा रही थी, उनका gang rape हुआ, बहुत critical थी, hospital में हम मिले, उनको भी हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी काफ़ी आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस कि वो कुछ बन पाए, वो जैसे हर एक की हीलिंग का टाइम अलग होता है, वो फिर भी अभी भी ट्रॉमा से निकलने में उनको टाइम लग रहा है, शी वॉन्ट्स टू बी एन IPS ऑफिसर, शी इज़ अ स्कॉलर, शी इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, बट अभी उसको जान को भी खतरा रहता है बिकॉज गाँव के लड़के थे ना, तो बहुत सारी चीज़ों से वो निकल रही हैं, उभर रही हैं।
एक बार बन गई ना IPS ऑफिसर फिर बताएगी वो सबको।
सही में बहुत कोशिश कर रहे हैं उसके उसको करने के लिए, बट मैंने कुछ लोग, हाँ जब उसके एग्जाम का अभी मौका था, फिर भी बेचारी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, बेचारी नहीं बोलना चाहिए, शी इज़ नॉट बेचारी, हम लोग बेचारे हैं जो ऐसा सोचते हैं, वो एग्ज़ाम देने गई, अपनी सिक्योरिटी उसको मिली हुई है क्योंकि गाँव की लड़के हैं, वो एग्ज़ाम देने जाती है, रूम में जाती है, तो उसको एग्जाम नहीं देने दिया जाता
12th क्लास में,
नहीं जो वो फर्स्ट ईयर
में,
जब जिस टाइम उसका गैंग रेप होता है उसके 6 महीने बाद एग्जाम था, हमने उनको सिक्योरिटी दिलाई, उसको एग्जाम नहीं देने दिया।
क्यों?
वो टीचर ने बोला अच्छा तो गार्ड लेके आई है सिक्योरिटी, बाद अपने आपको ज्यादा बन रही है, तो गार्ड लेके क्यों आई है स्कूल में, तो उसने बोला मैम मेरे को थ्रेट है, तो मुझे तो दिया हुआ है कोर्ट ने,
वो गुंडे हैं जो,
उसने उसको एग्जाम रूम से बाहर कर दिया,
तो टीचर के ऊपर कोई एक्शन नहीं
हुआ, हमने सस्पेंड उसको, बट वो गांव की थी तो उसकी ये थी कि नो थॉट प्रोसेस, उसको एग्जाम उसके लिए चैलेंज बहुत क्रिएट कर देना है स्पेशली इन विलेज।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हाउ कैन पीपल हेल्प यू, आपको कैसे हेल्प करें, आप क्या चलाते हो, इज देयर वे आपके एनजीओ में लोग जुड़ सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कैसे, हाउ डू यू गेट फंडेड, व्हाट इज लाइक, लेट अस नो।
सो बेसिकली पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया इज अ मूवमेंट, जो मैंने संस्था बनाई थी 2007 में जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, आई स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प वुमेन इन जनरल, बट ये जो रेप वाला हुआ वो मुझे निर्भया के बाद से रियलाइज हुआ कि इट नीड्स वेरी गुड पैशन इन द सेंस वो जो डाइल्यूट ना हो, तो उसको मैंने मूवमेंट का नाम दिया परी, पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, निर्भया के बाद बना, तो हम चाहते हैं इसमें सब एसोसिएट हों, इट इज़ नॉट माई प्राइवेट थिंग, इट्स दैट्स वाई इट्स अ मूवमेंट, तो उसमें हम अभी लास्ट ईयर हमने 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है, ट्रेनिंग में चेंज मेकर का एक टैग है विच आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू ऑल्सो, उसमें हम चेंज मेकर्स बनाते हैं कि मैं तो कितना ही रहूँ या नहीं रहूँ, बट ये ज्योति जलनी चाहिए, दिस लाइट शुड गो ऑन, सो वी ऑल शुड बी इक्विप्ड टू हैंडल दीज काइंड ऑफ केसेस, एंड ऑल्सो इट इज़ आर ड्यूटी टू वर्क ऑन प्रिवेंशन, तो मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है, दे कैन रीच आउट टू अस, आई कैन शेयर द डिटेल्स, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, कोई केस आपको दिखे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, वी कैन हेल्प यू,
हेल्पलाइन नंबर तो हम इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे,
ठीक है,
सबके लिए,
जी जी, और प्लस आप वॉलेंटियर कर सकते हैं, वो सबसे ज़रूरी है, आप श्रमदान, देखिए हर तरह का है, हमें डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स लगते हैं, पैसा लगता है, हमें हेल्प चाहिए,
अगर किसी को डोनेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं,
हमारी वेबसाइट पे हमारा लिंक है www.pariindia.in, उस पे वेबसाइट पे बारकोड है, आप वैसे भी रीच आउट करेंगे यू विल फाइंड परी, यू कैन डोनेट,
तो ये इधर नीचे हम लोग डाल देंगे, वहाँ पे भी लोग डोनेट कर सकते हैं, एंड लेट्स मेक दिस अ थिंग कि इस वीडियो से जो भी मोनेटाइजेशन आएगा वो भी हम लोग सब उसी पे डोनेट कर देंगे,
थैंक यू सो मच,
नो दैट्स जस्ट द लीस्ट वी कुड डू, जो भी इस वीडियो का पूरा मोनेटाइजेशन होगा जितना एड से बनेगा वो सब हम प्रॉपरली इसमें डाल देंगे, एंड इनफैक्ट वी विल मेक इट अ हैबिट कि अगर ये वीडियो एक क्वार्टर दो क्वार्टर से ज्यादा चलता है तो हर क्वार्टर हम डालते जाएंगे,
सो
दैट बी
Utilizing the funds in two manners because I want to justify what people are donating, they should know खाली विक्टिम्स को सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज आवर बिगेस्ट मैंडेट. जब तक सरकार उन्हें सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज दे आर सपोज टू गेट देयर कॉम्पनसेशन, बट वो आने में बहुत टाइम लगता है, तो मीनवाइल हम सपोर्ट करते हैं, चाहे उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, एजुकेशन हो, रिहैबिलिटेशन हो. प्लस जो मेरा बिगेस्ट मैंडेट जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, वो कि हम लोग ऐसे और चेंज मेकर्स बनाएं. सो आई कीप ट्रैवलिंग एंड कीप प्रमोटिंग दिस टू इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल. मैं पूरा बिहार कवर कर चुकी हूँ, झारखंड मैंने शुरू किया, अभी हम गांव गांव तक जा रहे हैं. तो वो वहाँ तक ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स लगते हैं, तो उसमें भी कई लोग बोले कि विक्टिम्स के लिए दिया नहीं, इसको हम अपने लॉजिस्टिक्स में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि वी वॉन्ट टू क्रिएट मोर चेंज मेकर्स एंड दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू नीडिंग मनी.
परफेक्ट, थैंक यू सो मच. मैं इधर वेबसाइट की लिंक भी डाल दूंगा, हेल्पलाइन नंबर भी डालूंगा, सो दैट जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करें, जिनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है अवेयरनेस क्रिएट करें. हम ई बुक की कॉपी भी डाल देंगे लिंक, एंड एट द सेम टाइम फंडिंग की लिंक डालेंगे, जिसको डोनेट करना है दे कैन डोनेट एज वेल. प्लस इस वीडियो से जो प्रोसीडिंग्स आएगी वील पुट दैट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड टेलिंग अस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आई होप कि इससे अवेयरनेस हो, कॉन्वर्जेशंस अराइज हों, लोग ज़्यादा बात करें, लोग समझें कि ये कैसे केसेस हमारे आसपास होते जा रहे हैं, सो दैट वील बी मोर अवेयर. एंड अगर किसी को बहुत डर लग रहा है जिसके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, तो आपको हेल्पलाइन पे आपको रीच आउट करें ताकि आप उनकी हेल्प कर पाए.
बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
थैंक यू थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें बताओ कि क्या ऐसी और रियल सिचुएशंस और रियल लाइफ के क्राइम्स एंड अनसर्टनिटीज जो लाइफ में होती है उनके बारे में क्या हम और इन्फॉर्मेशनल एपिसोड्स बनाएं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में बताओ, अगर नहीं तो बताओ कि हमें हमसे इस एपिसोड में क्या गलती हुई जो हम अगली बार दूसरे एपिसोड्स में रिपीट नहीं करें. ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में उसे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि इंडिया में ग्राउंड रियलिटी में कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है, और एज अ सोसाइटी हमें बहुत काम करना है. अनटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट.